नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सब लोग बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ईशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रंगनाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। श्री रंगम धाम की जय। श्री भूलोक वैकुंठ धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे। आप सबका श्री रंगम धाम में स्वागत है। ये बहुत ही अलौकिक धाम है और ये रंग क्षेत्र है। रंग क्षेत्र मतलब है नित्य स्थान, नित्य मतलब डांस। तो ये लक्ष्मी देवी का नृत्य का स्थान है और लक्ष्मी देवी का नाम है श्री रंगनाथ नायिका, रंगनायिका, रंगनाथेर नायिका। और लक्ष्मी देवी यहाँ पर श्री रंगनाथ भगवान के आने के कई हजारों साल पहले से यहाँ पर निवास कर रही है और तपस्या भी कर रही है कि रंगनाथ भगवान यहाँ पर आए। उसी के फल में यहाँ पर रंगनाथ जी आए तो श्रीरंगम को श्री ब्रह्मा जी और सभी देवता लोग वही भूलोक वैकुंठ के रूप में जानते हैं और स्वयं रंगनाथ भगवान भी बताते हैं कि ये भूलोक वैकुंठ है, ये मेरा स्वयं वैकुंठ है, मेरा नित्य धाम है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जहाँ पर भी है वहाँ पर केवल ये सोचता है कि मुझे रंग क्षेत्र जाना है, ओनली ही थिंक्स दैट आई वॉन्ट टू गो टू रंगनाथ। थोड़ा सा इमीडिएटली ऑल सिंस आर वैंक्विश्ड, सारे पाप वहीं पर नष्ट हो जाते हैं केवल सोचने मात्र से। तो आप सब लोगों ने सोचा है बम्बई में कि रंगनाथ जाएंगे, इसलिए निश्चित रूप से आप सबके सारे पाप नष्ट हो गए। कौन बोल रहे हैं वहाँ पर, एनीबॉडी इज देयर आउटसाइड? तो श्री रंगनाथ क्षेत्र जो है ये इस मंदिर का जो राजगोपुरम है, राजगोपुरम जो इस मंदिर का है, ये सारे विश्व में सबसे ऊंचा है। और इस मंदिर में साल के 322 दिन उत्सव चलते रहता है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, हर समय कोई ना कोई उत्सव चलते रहता है। तो इस तरह से श्री रामानुजाचार्य का नाम लिए बिना श्री रंगनाथ का रंग क्षेत्र का गौरव पूर्ण नहीं होता है। तो रामानुजाचार्य कुल 120 साल उनका लीला यहाँ पर चला, और 120 साल में 80 साल वो यहाँ पर रहे, उसमें 16 साल वो श्री रंगनाथ जी के चीफ पुजारी के रूप में सेवा किया उन्होंने, 16 ईयर्स, और 80 साल यहाँ पर उन्होंने निवास किया है। इस प्रकार से ये बहुत ही विशेष स्थली है, और इसका इतिहास मैं आपको भी आपको बताऊँगा। श्री रंगनाथ क्षेत्र जो है ये पवित्र नदी कावेरी के किनारे पर बसा हुआ है, और जैसे मंत्र बोलते हैं हम लोग, गंगे च जमुने चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, ये जो मंत्र है, ये मंत्र बोलकर हम अपने आचमन पात्र में सभी नदियों को आह्वान करते हैं, और उसमें 7 नदियों को आह्वान करते हैं, अनंत पवित्र नदियां जो हैं उसमें 7 नदियों को आह्वान करते हैं। उन 7 नदियों में एक नदी है कावेरी, और इस कावेरी नदी के किनारे पे रंग क्षेत्र विराजमान है। इसी कावेरी नदी के किनारे में और एक गांव है, इसका नाम है काबूर, वो आंध्र प्रदेश में आता है। उस नदी के किनारे बैठकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय, जो विशाखा देवी के अवतार हैं, उनके साथ बैठकर गौड़ीय संप्रदाय का जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा किया है। गौड़ीय संप्रदाय के अंदर 3 प्रमुख सिद्धांत है, एक है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिधेय ज्ञान, और तीसरा है प्रयोजन ज्ञान। संबंध ज्ञान यानी भगवान के साथ संबंध कैसे जोड़ा जाता है, भौतिक दुनिया से कैसे संबंध तोड़कर विरक्त होकर भगवान से आसक्त कैसे होना है, इसे संबंध ज्ञान कहते हैं, जो भगवान ने वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक दिया, और फिर जो सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे उसमें संबंध ज्ञान का पूरा वर्णन उन्होंने दे दिया है। फिर रूप गोस्वामी को इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर दशाश्वमेध घाट इस स्थान पर बैठकर 9 दिन तक रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने अभिधेय ज्ञान दिया। अभिधेय ज्ञान का मतलब क्या है? अभिधेय ज्ञान मतलब जो भगवान से संबंध जोड़ चुका है, जो भगवान की सेवा शुरू कर चुका है, कैसे परिपूर्ण तरीके से भगवान की सेवा करनी है, हाउ टू सर्व कृष्णा परफेक्टली आफ्टर इस्टेब्लिशिंग वंस कनेक्शन विद द लॉर्ड। जो सेवा की परिपूर्णता है वो अभिधेय ज्ञान कहते हैं उसको, वो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिया। फिर रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और कई ग्रंथ लिखे वृंदावन में रहते हुए, उसमें ये अभिधेय ज्ञान प्रकट किया है। फिर रामानंद राय जो विशाखा देवी भगवान के सखी है, उसके अवतार हैं, वो गवर्नर थे नवाब हुसैन शाह, सॉरी राजा प्रताप रुद्र के राज्य में वो गवर्नर थे इस प्रांत के, लेकिन भगवान के बड़े परम भक्त थे वो, उनको उन्होंने बैठकर प्रयोजन ज्ञान दिया। प्रयोजन ज्ञान का मतलब क्या है? अल्टीमेट पर्पस, प्रयोजन मीन्स अल्टीमेट पर्पस। और क्या पर्पस है? भगवान की सेवा में परिपूर्ण होने के बाद भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का परिपूर्ण उद्देश्य है, अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, प्रेम कुमार तो बहान, प्रेम भगवान का प्राप्त करना, इसको पंचम पुरुषार्थ कहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये लौकिक पुरुषार्थ कहे गए, और प्रेम जो पुरुषार्थ है वो पारलौकिक पुरुषार्थ है, ट्रांसेंडेंटल पर्पस ऑफ लाइफ। बाकी 4 पुरुषार्थ लौकिक हैं, दुनियादारी के लिए, धर्म है, इंद्रिय भोग भी करना है, हाँ धर्मार्थ और धन भी कमाना है, उसके बाद में सबसे परेशान हो गए फिर मोक्ष प्राप्त करना है। वंस यू गेट फेड अप ऑफ ऑल दिस वर्ल्डली एक्टिविटीज देन यू टेंड टुवर्ड्स रिनन्सिएशन एंड मुक्ति लाइक दैट. बट ये चार पुरुषार्थ जो है ये वैष्णव इसको ज़्यादा महत्व देते नहीं है. इवन इफ यू फेल टू परफॉर्म दिस फोर पुरुषार्थस यू डोंट परफॉर्म इट नाइसली परफेक्टली इट्स ऑल राइट. बट अगर ये सब करते हुए दोष होते हुए भी अगर आप भगवान का प्रेम निर्माण करते हो जीवन में तो आपका जीवन सफल है क्योंकि प्रेम ये पंचम पुरुषार्थ दिव्य पुरुषार्थ है. तो ये दिव्य पुरुषार्थ के बारे में ज्ञान प्रयोजन ज्ञान रामानंद राय को भगवान ने कावेरी के किनारे पे कावूर स्थान पर दिया. ऐसा पवित्र स्थान है ये. तो इस तरह से श्रीरंगम क्षेत्र जो है इसका इतिहास ऐसा है. जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा जी को ज्ञान देने के लिए भगवान हंस अवतार में आए और उन्होंने सेकेंडरी क्रिएटर यानी द्वयम प्रथम क्रिएटर तो भगवान स्वयं हैं और द्वितीय क्रिएटर के रूप में ब्रह्मा जी को स्थापन किया उनको पूरी तरह शक्ति दिया. उस समय जब ब्रह्मा जी ने निर्माण करना शुरू किया सृष्टि का निर्माण करना तो निर्माण करते करते उनके कान के पीछे से दो राक्षस पैदा हो गए मधु और कैटम. हाँ हरे मुरारे मधु कैटम आ रे ऐसे हम लोग भगवान का भजन करते हैं. जो भगवान कैटम और मधु के शत्रु हैं मतलब पूर्ण शत्रु उनको मानते हैं लेकिन भगवान के लिए सब लोग भक्त हैं उनके बालक हैं. तो उस समय उन्होंने वेदों को चुरा लिया. जो वेद भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए थे हाथ में दिए थे क्या वेद भगवान को कैसे दिए थे. हाँ उस समय लेखन नहीं था उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था पेपर नहीं था नथिंग वॉज राइटिंग सब कुछ ध्वनि के रूप में था. तो भगवान ने ध्वनि उच्चारण भी नहीं किया सीधे ट्रांसफर किया ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में. हाँ तो वो ब्रह्मा जी के पास वेदों का ज्ञान किस प्रकार से था स्मृति के रूप में था एज मेमोरी. वो मेमोरी जो है ब्रह्मा की भगवान के बारे में नॉलेज जो था दिया गया था वो जो मेमोरी है जो स्मृति है वो मधु कैटम ने छीन लिया. अभी आपसे अगर कुछ छीनना था हम किताब छीन के लेके जाएंगे आपका बुक लेके ले जाएंगे फिर आप भाग भाग के आएंगे पुलिस को लेके आएंगे और बुक हमसे वापस मिले प्राप्त करेंगे. लेकिन ये दिव्य अलग प्रकार की चोरी है जैसे युग है वैसे प्रकार की चोरी है ये. तो मधु कैटम ने क्या किया जो ब्रह्मा के हृदय में स्मृति थी वेदों की वो छीन लिया. तो ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना किया तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया. अब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और वेदों को बचाने का प्रयास किया. दो दो लीलाएं हैं इसमें सत्यव्रत मुनि की भी लीला है इसमें. तो उसमें बाद में भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों को बचाया और सत्यव्रत मुनि के पास में जाके उसको सुरक्षित रखा. सो कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ मत्स्य अवतार प्रोटेक्टेड द वेदास एंड एंट्रस्टेड देम विथ सत्यव्रत मुनि. उसके बाद में भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया. हयग्रीव का मतलब है हय यानी कि घोड़ा और ग्रीव यानी कि गर्दन. जिस व्यक्ति की गर्दन घोड़े की है मतलब शीश और गर्दन उसको हयग्रीव कहते हैं. तो भगवान ने हयग्रीव के रूप में मधु और कैटभ से घनघोर युद्ध करके उनको मार दिया उनका वध कर दिया. उसके बाद में ब्रह्मा जी के मन में ऐसी इच्छा हुई कि जो परम पुरुष हैं उनका दर्शन प्राप्त किया जाए. ये तो भगवान का अवतार है. हयग्रीव जो है वो परम पुरुष अवतार नहीं है. परम पुरुष तो भौतिक दुनिया में एक व्यक्ति है उसका नाम है कारण उदकशायी विष्णु. क्या बताया मैंने बताइए कारण उदकशायी विष्णु और कारण उदक सागर है कारण सागर कहते हैं उसको. जब भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं तो उनके बहुत सारे जो विस्तार हैं अवतार हैं वो केवल वैकुंठ में रहते हैं वो नीचे आते नहीं. जैसे बलराम जी हैं उनके बाद में चतुर्व्यूह है संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव. उसके बाद संकर्षण नंबर 2 का अवतार है. उसके बाद संकर्षण नंबर 2 से नारायण का अवतार होता है और इनके द्वारा अनेक विष्णु का निर्माण होता है. जो अनंत विष्णु जो है वो सभी वैकुंठ लोगों का राज्य संभालते रहते हैं. एक एक विष्णु एक एक वैकुंठ को संभालते हैं. और जैसे सागर में कितने मोती हो सकते हैं अनंत मोती वैसे भगवान के निर्माण में वैकुंठ में ब्रह्म ज्योति के अंदर अनंत वैकुंठ है, हर एक वैकुंठ में एक एक विष्णु अलग अलग उनका राज्य संभालते हैं। ये सब भौतिक दुनिया में नहीं है, सब अलौकिक दुनिया में। लेकिन इसके बाद नारायण का विस्तार कारण उदक शाही विष्णु में होता है, और ये अवतार जो होता है वो भौतिक दुनिया में होता है। भगवान के जो दिव्य धाम है उसमें सेंट्रल स्थान में है गौलोक वृंदावन, उसके बाद में दिव्य द्वारका है, उसके बाद में दिव्य मथुरा है, फिर दिव्य द्वारका है, और फिर दिव्य अयोध्या है। ट्रांसेंडेंटल अयोध्या मथुरा और द्वारका, उसके बाद में ब्रह्मा भगवान के शरीर से जो दिव्य ज्योति निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, सर डिवाइन लाइट। इसलिए भगवान के राज्य भगवान कहते हैं, गीता में बताते हैं कि मेरे दिव्य धाम में कोई चांद और सूरज नहीं है, देयर इज नो बिजली, नो सन एंड मून, ये स्वयं प्रकाशित है। कौन से प्रकाश से? जो भगवान के शरीर के द्वारा ही निकलता है वो ब्रह्म ज्योति के द्वारा ही स्वयं प्रकाशित है। तो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश जहाँ तक फैला हुआ है वहाँ सब वैकुंठ विराजमान है, और 24 आवर्स लाइट रहता है वहाँ पर भगवान के शरीर के। इसलिए आकाश का रंग नीला है क्योंकि भगवान के शरीर से निकलने वाला वो रंग है। बीच में विरजा नदी आती है, ये भी भगवान की दिव्य सखी है, और उसके बाद में महाविष्णु का निर्माण होता है। और महाविष्णु का निर्माण कहाँ होता है? जहाँ पर एक बड़ा बादल आता है, इसका नाम है महत्तत्व, बिग क्लाउड, जो भगवान के शरीर से निकलने वाले दिव्य ज्योति को रोकता है, और उसके नीचे अंधेरा होता है। अंधेरे में जितने लोग हैं वो सब भौतिक लोग हैं, उसमें प्रकाश नहीं है। उसमें प्रकाश के लिए चंद्र और सूर्य की आवश्यकता होती है, और कोई आर्टिफिशियल मीन्स अग्नि दीपक बिजली की जरूरत पड़ती है। उसमें हम लोग सब लोग रह रहे हैं, बाय द वे प्लीज अंडरस्टैंड, अभी सूरज है इस लाइट है, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं है एक्चुअली, ये अंधकारमय जग है, भौतिक दृष्टि से भी अंधकारमय है और आध्यात्मिक अज्ञान के दृष्टि से भी अंधकारमय है। डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस ऑफ फिजिकल डार्कनेस ऑल्सो। तो वो भौतिक सागर भौतिक दुनिया में जब महाविष्णु का कारण उदक शाही विष्णु का दोनों एक ही नाम है, एक ही सेम पर्सनैलिटी, जब वो अवतारित होते हैं उनके शरीर से दिव्य जल निकलता है, इसको हमारी भाषा में हम पसीना कहते हैं, लेकिन दिव्य भाषा में उसको स्वेद कहते हैं। वो दिव्य स्वेद जल निर्माण होता है, उसका एक सागर निर्माण होता है, उसका नाम है कारण सागर, द कॉजल ओशन, और उसमें ये महाविष्णु योग निद्रा में विराजमान रहते हैं, योग निद्रा में सोते रहते हैं हमेशा, और सोते सोते ही पूरे विश्व का निर्माण करते हैं। जस्ट इमेजिन होल द क्रिएशन, इसमें हम लोग सब लोग रहते हैं, वो सब उनके शरीर के एक एक रोम से निकलता है और बीज रूप में निकलता है, बाहर निकलने का उसका विकास होता है और एक ब्रह्मांड निर्माण होता है। ऐसे उनके शरीर के अनंत चित्रों से अनंत ब्रह्मांड अनंत समय तक निकलते रहते हैं, जब तक वो उच्छ्वास छोड़ते हैं, ही एक्सहेल्स, जब वो श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उनका एक श्वास जो है वो 3,011,000,000,000 ईयर्स चलता है। कितने जीरो हो गए उसके अंदर बताओ, हाँ 311 लिखो और उसके आगे 10 जीरो लगा दो, इतने साल तक उनका एक श्वास चलता है, और उतने काल तक एक ब्रह्मांड का कालावधि होता है, ब्रह्मांड एक जो है उतने काल तक चलता है। फिर वो श्वास लेते हैं, स्टार्ट इनहेलिंग, और वो भी चलता है 311 बिलियन ईयर्स, और उसमें सारा महाप्रलय होता है, वो ब्रह्मांड जो है वो वापस महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करता है, और वो फिर जब दोबारा श्वास छोड़ते हैं तो वो दोबारा प्रकट होता है। मतलब क्रिएशन डिसोल्यूशन, क्रिएशन डिसोल्यूशन, इन बिटवीन मेंटेनेंस, इस प्रकार से भौतिक दुनिया का निर्माण होता है। और ये निर्माण और व्यवस्थापन और नाश ये वैकुंठ का नहीं होता है, वहाँ पर कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, इस जगत में सब जरा जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा सब लगा हुआ है, हाँ वहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं होता है भगवान के धाम में। तो ये जो महाविष्णु है इनके द्वारा जब अनंत ब्रह्मांड निर्माण होते हैं तो एक एक ब्रह्मांड में ये गर्भ उदक शाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। टेक वन यूनिट वन ब्रह्मांड, सो वन विष्णु एंटर्स इन दैट विच इज एक्सपेंशन ऑफ कारण उदक साई विष्णु. बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, और इजी और डिफिकल्ट? डिफिकल्ट. ओ ये समझना बहुत ज़रूरी है. हाँ एक जगह पर कथा है तो सुनने को अच्छा लगता है, एक जगह पर फिलॉसफी है ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फिलॉसफी समझ में आएगा तो कथा का स्वाद आएगा. हाँ हम कहेंगे अरे वो बालक कृष्ण था, उसने एक मुक्का मार दिया और कंस मर गया. अच्छा बालक था क्या वो? मतलब कंस बहुत कमज़ोर था लगता है, बहुत कमज़ोर था, एक मुक्का मारा तो मर गया वो. लेकिन कंस का पूरा इतिहास सुनेंगे आप और भगवान कौन है उसका पूरा समझ लेंगे फिलॉसफी, तो आपको समझेगा कि वो परम पुरुष भगवान पुरुषोत्तम जो है वो एक बालक के रूप में अवतार लिया फिर एक मुक्का मारा. वो बलराम जी जिन्होंने एक घास का तिनका उठाया और रोमहर्षण सूत को गले में लगाया, स्पर्श करते ही रोमहर्षण का मृत्यु हो गया. आप बोलेंगे सब बेकार की बातें, ये सब क्या है, सच नहीं है ऐसा आपको लगेगा. अगर आपको फिलॉसफी का ज्ञान नहीं रहेगा तो आपके लिए सारी कथाएं जो है नहीं के बराबर है. इसलिए कहा गया है कि फिलॉसफी एंड इमोशन ये भक्ति की दो रेल की दो पटरियां हैं, ये साथ साथ चलना चाहिए. फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग और भक्ति की भावना, इस विल गो टुगेदर, देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड द रियलिटी. जब हम लोग सोचते हैं अरे ये तो माखन चोर भगवान है, तो क्रिश्चियन लोग पूछते हैं एक ऐसा भगवान है तुम्हारा वो तो चोरी भी करता है, रात को डांस भी करता है किसी की औरत के साथ में, अरे भगवान है. क्योंकि उनको पता ही नहीं फिलोसॉफी के लिए भगवान कौन है, उनका महिमा क्या है. इतने बड़े ब्रह्मांडों के निर्माणकर्ता कारण उदकशाही विष्णु के निर्माण करता है, वो भी डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है. नंबर वन तो कृष्ण भगवान है, उनके बाद में बलराम जी है, उनके बाद में चतुर्व्यूह है, उसके बाद में संकर्षण नंबर दो है, उसके बाद में नारायण है, उसके बाद में कारण उदकशाही विष्णु का अवतार है और भौतिक जगत के प्रथम पुरुष है वो, द फर्स्ट पुरुष अवतार. सेकेंड पुरुष है इस गर्भोदकशाही विष्णु. और जब इस ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु का निर्माण होता है तो उनके नाभि से फिर कमल निकलता है, और उस कमल के अंदर सबसे पहले ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, फिर उसके देह के अंदर सारे 14 लोक निर्माण होते हैं और वो पूरा ब्रह्मांड कहलाता है. वन ब्रह्मांड इज 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, उसमें 7 स्वर्ग लोक है, 1 पृथ्वी लोक है, 1 और 6 पाताल लोक है, मतलब नरक लोक है. 6 + 1 + 7 = 14, 14 भुवन से वो बना हुआ है. फिर ब्रह्मा जी को भगवान हंस अवतार में बोध देते हैं और निर्माणकर्ता बनाते हैं. फिर ब्रह्मा जी हम सबका निर्माण करते हैं, हर योनि का, सांप की, पंछी की, कीटक की, पेड़ की, हाँ जलाशय में क्या बोलते एक्वेटिक्स, जलचर, भूचर, खेचर यानी पक्षी, ये सबका निर्माण करते हैं. और इन सारे 84 लक्ष योनियों में अनंत जीवों का निर्माण करने के बाद में गर्भ उदकशाही विष्णु उनके हरेक के शरीर में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं. वो परमात्मा जो है वो क्षीरोदकशाही विष्णु हैं जो दूध के सागर के अंदर रहते हैं. मिल्क ओशन जिसका मंथन हुआ था ना, वो उस ओशन का हुआ था. वो एक ब्रह्मांड के अंदर कोने में होता है, उसका नाम है श्वेत द्वीप, उसके आगे दूध का सागर है. और ये 7 प्रकार के सागर है, एक सागर दूध का है, एक सागर घी का है, एक सागर तेल का है, एक सागर लवण अर्णव यानी कि नमक का है जो हमारे पास में है. हमारे पास जितने भी सागर हैं सब सॉल्टी हैं. तो ये विरजा देवी के 7 पुत्र थे जिनको गौलोक में शाप मिला, क्योंकि तो विरजा देवी और भगवान का जो मिलन हो रहा था उस समय इन 7 बालकों ने डिस्टर्ब किया, तो विरजा देवी त्रस्त हो गए और पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर जाओगे और अलग अलग रहोगे सागर बनकर. तो ये 7 जो है वो सागर बन गए, उसमें एक शराब का सागर भी है एक लोक के अंदर, वहाँ पर आपको जाना नहीं, डोंट वरी. ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है. अगर आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे सब सिंपल है. और सब सिंपल होने के लिए क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट. अगर आपको इंटरेस्ट है तो इट बिकम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. तो हम क्या कह रहे थे कि जो श्वेत द्वीप के पास में जो शेर सागर है उसके अंदर जो विष्णु रहते हैं वो गर्भ उदक शायु के अवतार हैं, और वही आपके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है. तो परमात्मा कृष्ण नहीं है, एक तरह से कृष्ण भी है एक तरह से नहीं भी है, क्योंकि वास्तविक रूप में वो कृष्ण के अवतार हैं. ओके. ये सब क्यों बताया आपको मैंने? क्योंकि वो कारण दुखसाई विष्णु को, जिसका नाम महाविष्णु भी है, उसको देखने के लिए ब्रह्मा ने तपस्या किया, इसलिए इतना आपको मैं पुराण बताया उपाख्यान कहते हैं उसको। बाय द वे एक और कहानी बताई, तो ब्रह्मा जी क्षीर सागर के किनारे बैठे और तपस्या किया, तब भगवान के दर्शन प्राप्त होने के लिए प्रार्थना किया। ओम नमो नारायणाय, बोलो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, यथावकाश उस क्षीर सागर से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, सोने का बना हुआ विशाल और भव्य दिव्य तेजस्वी विमान सागर से प्रकट हो गया, और उस विमान के अंदर ब्रह्मा जी ने श्री रंगनाथ का दर्शन किया, जिसमें वो लेटे हुए शयन करते हुए दर्शन दिया उन्होंने। तो ऐसे कहा गया है शास्त्र में कि 1000 दिव्य युग, दिव्य सालों तक, दिव्य मतलब ब्रह्मा जी का साल जो है उसका गणित समझाएंगे आपको आप लिखो लिखो लिखो, समझ में आएगा आपको। ये बहुत इंटरेस्टिंग मामला है, समझ समझना कि बहुत किचकट है, बहुत तकलीफ वाला है, बहुत ये कथा में क्यों डाल रहे हैं आप पत्थर चीर के अंदर, ये मिट्टी क्यों डाल रहे हैं आप, ऐसा आपको लगेगा। वेरी इंटरेस्टिंग, 43,20,000 ईयर्स लिखो पहले आप, 43,20,000 मतलब 4,3,2,0,3,0,0,0 ऐसा लिखो आप, 43,20,000 ये ब्रह्मा जी का, सॉरी ये सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग और कलयुग, ये चार युग मिलके इतना समय होता है, इतने साल का। इसको 1000 से गुणित करो, मतलब उसको और 3 0 लगाओ उसके साथ में, कितने हो गए 0, 4 + 3 = 2, 4 + 3 = 7 हो गए, 432 कोटि हो गए, है ना। इतना जो साल का समय है ये ब्रह्मा जी का 12 घंटा है, ये 12 घंटा हो गया ब्रह्मा जी का, दिन का समय हो गया, उतनी उनकी रात होती है, तो उसको 2 से गुणित करो, मतलब 864 और 70 हो गया, मैं बिना लिखे काउंट कर रहा हूँ, आप लोग लिख रहे हो कि नहीं 864 और 70, ये समय जो है ये ब्रह्मा जी का एक दिन 24 आवर्स है, और इसको आप 30 से गुणो तो उनका 864 एंड 70 लगाओ, उसको अभी नहीं गुणित करना, बाद में गुणित करना 30 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये ब्रह्मा जी का एक महीना हो गया। ऐसे ब्रह्मा जी के साल में 12 महीने होते हैं, उसको 12 से गुणित करना हो गया, और उसको ये आपका कैलकुलेटर नहीं कर सकता है, आपके कैलकुलेटर में ये इतना फिगर्स नहीं रखा गया है, ये 12 में गुणित करने के बाद उसको 100 से गुणित करो, क्योंकि तो ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल जीते हैं, समझ में आए आपको। हरे कृष्णा, फिर माइंड बॉगलिंग ना, ऐसे ही आपको देख के कीटक को लगता है, क्योंकि एक ऐसा कीटक होता है, अनेक कीटक ऐसे होते हैं जिनका 3 जनरेशन आपके एक रात में होता है। आप ऐसे आए उधर से मदुरई से आए, रात को 10 बजे सो गए और सुबह उठे 6 बजे, तो उसमें कई कीटकों की 3 पीढ़ियाँ समाप्त होती है, मतलब जन्म होता है, जवान होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, 3, 4, 5, 6 पीढ़ियाँ होती हैं, और उनको आप बताएंगे, अरे जानते हो क्या, ऐसा एक जीव है जिसका नाम मनुष्य है, वो तुम्हारी 3 पीढ़ियों को उसकी एक रात भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग कुछ लोग 8 बजे सोते हैं और सुबह 9 बजे उठते हैं, तो 6 पीढ़ियाँ हो गई ना बीच में तो वो कीटक को लगेगा क्या बात कर रहे हो आप, नॉनसेंस बात कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है क्या, हमारी 3 पीढ़ियाँ 6 पीढ़ियाँ गुजरने के बाद भी इसकी रात ख़त्म नहीं होती है, और ऐसा दिन भी उसका होता है जो दिन में काम करता है वो, और ऐसे उसके 30 दिन में एक महीना बनता है, और ऐसे 30 दिन के 1 साल 12 होने के बाद 1 साल होता है, ऐसे वो 40, 50, 60, 70, 80 साल जीता है, मतलब 100 साल भी जीते, तो उसको चक्कर आ जाएगा समझने के बाद, समझेगा नहीं इसको वैसे ही हमारी स्थिति है कि महाविष्णु के हर एक रोम से ब्रह्मांड निकल रहा है, कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। और वो एक अपने शरीर के अंदर मुझे पसीना आ गया और एक बूंद तैयार हो गया, बहुत पसीना आया साउथ इंडिया में तो एक बूंद आ गया, एक बूंद नहीं आएगा करोड़ों बूंद आएंगे शरीर के अंदर, है ना। और उसके अंदर एक अमीबा बैठा हुआ है और उसको बोलेंगे, वो बोलेगा मैं तो सागर में हूँ, ही विल से आई एम इन द ओशन, बट यू विल टेल हिम नो 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 नो, ये ओशन नहीं है, ये मनुष्य नाम के शरीर के अनंत छिद्रों में से निकला हुआ एक बूंद है पसीने का। तो उसको चक्कर आएगा, समझेगा नहीं कि क्या है चीज़ें ये, ऐसा मनुष्य का ये खाली चमड़ी है, अंदर बहुत सारा मसाला है बाकी, तो किडनी भी है, लीवर भी है, हार्ट भी है, ब्रेन भी है, और आँखें भी है, और नाक भी है, और टॉन्सिल भी है, सब कुछ है उसके अंदर, समझ भी नहीं आएगा उसको। वैसी हमारी अवस्था है, जब हम महाविष्णु के बारे में सोचते हैं तो हमारी भी ऐसी अवस्था हो जाती है, क्योंकि उसके एक रोम से एक ब्रह्मांड निकल रहा है 14 भुवन वाला, और उस 14 भुवन के अंदर देवता, राक्षस, मनुष्य, 84 लक्ष योनि सब लोग रहते हैं उसके अंदर, उनका भी जीवन होता है अपना अपना, और हर एक लोक का जो टाइम टेबल है वो अलग अलग है। देवता जा रहे थे ना इंद्र भगवान, वहाँ पर 6 महीने का हमारा 6 महीने का वहाँ एक दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, ऐसे वो 100 साल जीते हैं। ब्रह्मा जी कैसे जीते हैं मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, उसको घर में जाकर गिनती करो, ये गिनती करेंगे ना आप तो आपको 311 बिलियन फिगर आएगा उसके अंदर, कुछ ऑड फिगर आएगा, राउंड फिगर 311 बिलियन आएगा। वो महाविष्णु का केवल एक सांस है, सांस, ओनली वन ब्रेथ। तो कैसे महाविष्णु होंगे, जस्ट इमेजिन, एंड ही इज सिंपली एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, ही इज नॉट कृष्णा, ही इज एक्सपेंशन ऑफ नारायण, हु इज एक्सपेंशन ऑफ संकर्षण, हु इज एक्सपेंशन ऑफ चतुर्व्यूह, हु इज एक्सपेंशन ऑफ बलराम, हु इज एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। दैट कृष्णा जब उसने एक मुक्का मारा तो कंस को तो मरना ही है, इतने महान व्यक्ति का एक मुक्का मतलब क्या, मजाक है क्या? उसने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड उसके मुंह के अंदर दिखाई दिया, मार्कंडेय अंदर चले गए तो पूरा पेट में अनंत ब्रह्मांड का दर्शन किया, फिर बाहर आए फिर देखा फिर दंडवत प्रणाम किया, ये तो बालक नहीं है, ये तो भगवान है। जब वो प्रलय काल में डूब रहे थे तभी उनको वहाँ पर दर्शन हुआ, एक बरगद के पेड़ के ऊपर वो बालक जो क्या कर रहा है, अपना ही पैर का अंगूर चूस रहा है, उसको पत्रशाही भगवान कहते हैं, पत्रशाही नारायणा, पत्र मतलब पत्र पर विराजमान है और अपने ही चरणों की जो माधुरी है जिसके लिए लोग तड़पते हैं वो खुद चूस रहे हैं उसको। तो जो सांस लेते हैं तो मार्कंडेय मुनि गेट सक्ड इनसाइड, नाक से उसके पेट में प्रवेश करते हैं और करोड़ों साल तक उनके पेट में रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं और फिर वो भगवान उनको बाहर फेंक देते हैं, तब पता चलता है कि भगवान है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि हम किसकी कथा सुन रहे हैं वो व्यक्ति को जानना जरूरी है। डोंट हियर द स्टोरीज एज एंटरटेनमेंट और बिकॉज इट फील्स नाइस, उतना ही लाभ नहीं उसका, ये दिव्य पुरुष के बारे में कथा सुन रहे हैं। तो उस विमान के अंदर ब्रह्मा जी को रंगनाथ का दर्शन हुआ। कहाँ गया वो, उड़ गया। हाँ ये कारण सागर के विष्णु है, हाँ वो भी कारण सागर में ऑफिस में रहते हैं तो कारण सागर ग्रुप में रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर हो जब ऑफिस जाएंगे तो एप्रन पहनेंगे, सिरस को पहनेंगे और अलग काम करेंगे ना, आप तो वही हो, घर जाएंगे तो किसी के पुत्र के रूप में काम करेंगे, किसी बालक के रूप में काम करेंगे, किसी का बेटा किसी का पिताजी बनकर रहेंगे, आपका रोल अलग है ना, दुकान में जाएंगे तो बिजनेसमैन बनकर रहेंगे, नेगोशिएशन करेंगे कस्टमर के साथ में, लेकिन घर में आएंगे तो सब कुछ छोड़ के आराम से रहेंगे। तो वैसे ये रंगनाथ जी जो है वो कारण विष्णु हैं, लेकिन ऑफिस में नहीं आए, वो लीला करने के लिए आए अपने भक्त के साथ में। तो इन तो मैंने ये सब गणित क्यों बताया आपको, ऐसे 1000 साल तक अपने आयु के 1000 साल तक दिव्य 1000 साल तक ब्रह्मा तपस्या किया था, उसके फल के रूप में उनको विमान के अंदर रंगनाथ जी का दर्शन हुआ। उनके साथ साथ में चतुष्कुमार थे, सनत कुमार, सनंदन, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 कुमार थे, सारे गंधर्व थे, अप्सराएं उनकी नृत्य कर रही थी,
सारे सप्तऋषि उनके साथ विराजमान थे, अनंत शेष भी उनके साथ में, उनका बिस्तर बने हुए थे और गरुड़ देव उनको हवा दे रहे थे, इस रूप में उनका दर्शन हुआ। तो ब्रह्मा जी ने, उन्होंने अपने सत्यलोक में यानी कि ब्रह्मा लोक में अंदर उनके लिए दिव्य मंदिर बनाया और वहाँ पर रंगनाथ जी को उन्होंने विराजमान किया, मतलब प्रतिष्ठापना किया उनका, और अपने जीवन के कई सैकड़ों साल तक उन्होंने उनका पूजा किया। अब बार बार गणित क्यों नहीं बताएंगे, आपको समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो हमारे लिए कितने जन्म बीत जाएंगे हमारे उसके अंदर, है ना। तो ब्रह्मा जी ने कई सालों तक, अपने कई सालों तक रंगनाथ जी का भजन किया, पूजन किया। उसके बाद में उन्होंने अपने द्वारा निर्मित उनके पुत्र सूर्यदेव को उसका सेवा संभाल दिया, हैंडेड ओवर द सर्विस टू सूर्यदेव। फिर सूर्यदेव के वंश में सूर्यदेव के पुत्र हैं मनु, उनका नाम है वैवस्वत मनु। सूर्यदेव का नाम क्या है, विवस्वान। सूर्यदेव ये पोस्ट है, पोस्ट जैसे मैनेजर कोई व्यक्ति नहीं होता है, मैनेजर के रूप में व्यक्ति काम करता है, मैनेजर कोई व्यक्ति नहीं है, सब पोस्ट। तो सूर्यदेव ये पोस्ट है, तो एक सूर्यदेव का नाम है विवस्वान और उनके पुत्र मनु है, उनका नाम है वैवस्वत मनु, यानी मनु जो विवस्वान के पुत्र है। फिर सूर्यदेव ने वो सेवा अपने पुत्र को सौंप दिया, उन्होंने कई सैकड़ों साल उसका पूजा किया। उसके बाद में उसके वंश में इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु राजा, जिनका नाम भगवद गीता में आता है। भगवान कहते हैं कि मैंने ये गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्य भगवान को दिया था, उसके बाद में उसके पुत्र को दिया था, उसके बाद में इक्ष्वाकु को दिया था। इस प्रकार से ये श्रृंखला टूट गई बीच में, आपको दोबारा बता रहा हूँ, ऐसे भगवान गीता में इस इक्ष्वाकु का उल्लेख करते हैं। इक्ष्वाकु बहुत ही महान राजा थे, ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वेरी वेरी पावरफुल। और इसी के वंश में रघु राजा हुए, रघु, और रघु के वंश में आगे प्रभु रामचंद्र का अवतार हुआ है, और इसी वंश में आगे जाकर राधा रानी का जन्म भी हुआ है, ठीक है। तो ये इतिहास की बात है। तो जब इक्ष्वाकु आए तो इक्ष्वाकु देवताओं से निर्मित थे लेकिन थे मनुष्य, उनका राज्य पृथ्वी पर था। जब उनके हाथ में सेवा आई तो उस समय यहाँ के लोग देवताओं के लोग में जाया आया करते थे, देयर वॉज फ्री वीज़ा अवेलेबल लाइक नेपाल एंड इंडिया, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट क्वालिफिकेशन। लेकिन उन्होंने देखा अपने दिव्य दृष्टि से कि आगे जाकर भविष्य में क्या होगा, मनुष्य को स्वर्ग में जाना मुमकिन नहीं होगा, ना देवता यहाँ पर आएंगे और ना मनुष्य वहाँ जा पाएगा। तो उस समय रंगनाथ की कृपा कैसे प्राप्त होगी लोगों को? देखो संत लोग ऐसे होते हैं, केवल अपना स्वार्थ नहीं सोचते हैं, मुझे मिल गया ना मुझे क्या करना है, बाकी को मिला, मुझे मिल गया ना महाप्रसाद लाइन में, बाकी को मिले या ना मिले, ये संत नहीं है। संत मतलब मुझे मिल गया तो रखेगा संभाल के, और सबको मिला कि नहीं कन्फर्म करेगा, फिर जिसको मिला नहीं उसका अपना आप भी शेयर करेगा, और सबको मिल गया ना वो देख के फिर खुद का शेयर करेगा, खुद खाएगा उसको। नारद मुनि में ऐसे ही थे, जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो भाव विभोर हो गए, लेकिन आपको याद किया सब लोगों ने कि इनको प्राप्त होना चाहिए, वरदान मांगा तो जगन्नाथ जी के रूप में वहाँ प्रकट हो गए, आपके सामने भी विराजमान। वैसे ही इक्ष्वाकु को भगवान रंगनाथ की सेवा प्राप्त हो रही है, और वो कितने ऋणी है, वो हाउ ग्रेटफुल इज, क्योंकि उनको तो स्वयं ब्रह्मा जी की 1000 साल की दिव्य तपस्या के फल के रूप में फ्री में उनको रंगनाथ जी का सेवा मिला। तपस्या किसने किया? ब्रह्मा जी ने। सेवा किसको मिल रही है? मनु को मिल रही है, उसके बाद में इक्ष्वाकु को मिल रही है। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, सब लोगों को लाभ होना चाहिए इनका। तो उन्होंने पृथ्वी तल पर बैठकर तपस्या शुरू किया। वो अयोध्या के राजा थे, दशरथ के पूर्वज हैं वो, अयोध्या का राज्य उसके पास में था। तो अयोध्या में बैठकर उन्होंने 1000 साल बहुत तीव्र तपस्या किया। उसका वर्णन हमारे गुरुदेव करते हैं, ठंड के मौसम में बर्फ के जैसे ठंड जल के अंदर गले तक डूब के रहना और ध्यान करना, गर्मी के मौसम में 5 अग्नि जलाना और उसके बीच में बैठकर तपस्या करना, और बारिश में केवल 1 वस्त्र पहनकर पूरी घनघोर वर्षा में बैठकर तपस्या करना। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हम लोग यात्रा में, हमारी बस लेट हो गई, बस में अच्छा सीट नहीं मिला, हाँ हमारे आश्रम से प्रसाद की जगह दूर है, वो हमारे आश्रम में होना चाहिए था, आश्रम में लिमिटेड सीट क्यों है, ऐसा आश्रम यहाँ पर क्यों नहीं है, ऐसे बहुत सारे कठिनाई यहाँ पर आते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप सब लोगों को रंगनाथ जी का दर्शन प्राप्त हो
इसलिए इक्ष्वाकु कितनी तपस्या कर रहे हैं, तो महाराज कहते हैं वी शुड बी अशेम्ड टू हियर अबाउट तपस्या ऑफ इक्ष्वाकु महाराज लुकिंग एट आवर कंडीशन, हाउ वी गेट डिस्टर्ब्ड। सो इक्ष्वाकु भगवान ने, इक्ष्वाकु राजा ने सत्यलोक से रंगनाथ जी पृथ्वी पर आना चाहिए इसलिए तपस्या किया। वो तपस्या के फल के रूप में भगवान बड़े प्रभावित हो गए, ब्रह्मा लोक में बैठे ना, वो ब्रह्मा जी के मंदिर में बैठे हुए हैं, वहाँ से वो जाने लगे तो ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान जा रहे हैं, तो रोने लगे वो कि भगवान आप क्यों जा रहे हो, मैंने कुछ अपराध किया क्या आपका, आपकी सेवा में कुछ त्रुटि हो गई, क्या हो रहा है बताइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन जिस प्रकार से पृथ्वी पर इक्ष्वाकु मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं जन कल्याण के लिए, उससे बड़ा मैं मोहित हो गया हूँ, आकर्षित हो गया हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। इस प्रकार से इक्ष्वाकु की तपस्या जब चल रही थी और ब्रह्मा जी के दरबार से वहाँ पर रंगनाथ जी निकल रहे थे, तो तपस्या को देखते हुए हमेशा इंद्र जो है वो बड़े अलर्ट हो जाते हैं। तपस्या किस लिए की जा रही है उसका बात अलग है, लेकिन वो तपस्या कर रहा है इसी बात से इंद्र बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि तपस्या करने से उसको डर रहता है कि तपस्या करने से ऋषि मुनि जो है वो इंद्र का पद प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र भी एक पोस्ट है, उस पोस्ट पर जो बैठता है वो हमेशा टेंशन में रहता है, पृथ्वी पर कोई तपस्या करेगा तो मेरा सीट ले लेगा आगे, मुझे वो डिस्प्लेस कर देगा वहाँ से। तो तपस्या क्यों कर रहा है जाने बिना इंद्र डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने क्या किया, उर्वशी मेनका जैसे बड़े 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 अप्सराओं को भेज दिया, उन्होंने अपना सुगंध फैलाना शुरू कर दिया, अपने चार्म्स जो है अपने जो शरीर का जो सौंदर्य है उसको डिस्प्ले करना शुरू किया। तो इक्ष्वाकु इतने महान राजा थे, इतने महान राजा थे, विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तपस्या किया, लेकिन खाली कान से सुना मेनका के घुंघरू की आवाज़ तो पूरा फेल हो गया, पूरा मामला उनका। हाँ, यहाँ पर इक्ष्वाकु केवल सुनने रहे, देख भी रहे, उनके सामने सारा एक एक मेनका नहीं आई थी, सारे साथ में आए थे, कामदेव और अति भी साथ में आई थी। कामदेव को मालूम है आपको, सभी देवताओं में सबसे सुंदर वो जो देवता है वो कामदेव है, और उसकी पत्नी रति देवी है। इनका काम क्या है, जहाँ जहाँ काम वासना है वहाँ पर जाके वो बाण चलाते हैं, पुष्प बाण, और सब लोग उनके प्रभाव से इस दुनिया में काम वासना में बद्ध रहते हैं। दे रिमेन लॉक्ड इन द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट सेक्स बाय द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कामदेव। तो कामदेव, रति, उर्वशी, रंभा, मेनका, ऐसे सभी लोग डांस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे फिल्मों में नाच करते ना आजकल, वैसा नहीं, हो पास आएगा तो बदबू आती है पसीने की, लेकिन इनके शरीर से दिव्य सुगंध निकल रहा है और अपना सुगंध सब जगह फैला रहे हैं। वो हर प्रकार से अपने इंद्रियों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं काम वासना भोगने के लिए। इतना सब देखने के बाद भी इक्ष्वाकु ने इनके हृदय के अंदर परमात्मा को देखकर सबका पूजा किया। ऐसे हमारे तुकाराम महाराज थे, है ना, तुकाराम महाराज के पास ऐसी वेश्या आई थी उनका दिल आकर्षित करने के लिए, तुकाराम महाराज ने चरण में दंडवत प्रणाम किया, अरे आप तो रखुमाई हो, पराविया स्त्री रखुमाई समान, उनका अभंग भी है कि हर स्त्री जो मेरी पत्नी नहीं है वो लक्ष्मी समान है मेरे लिए, पराविया स्त्री रखुमाई समान। उसका उसके प्रति आकर्षित होना, उसके प्रति फार्मी संभोग करना, ये सब दूर की बात है। उसके शरीर को ना देखते हुए उसकी आत्मा में जो परमात्मा का निवास है उसको देखकर तुकाराम महाराज ने उस वेश्या का वंदन किया और अभंग लिखे उसके ऊपर। फिर उसकी पत्नी आई, उस वेश्या को भगा दिया उसने अवड़ा भाई, उसकी बात अलग है। लेकिन कहना क्या चाहता हूँ मैं, इक्ष्वाकु महाराज कितने महान थे, देखो आप इतनी दिव्य लोगों की अप्सराएं उनके सामने शरीर का प्रदर्शन कर रहे हैं, नृत्य कर रही है उनको आकर्षित करने के लिए, सबका एक एक करके उन्होंने पूजा किया। फिर कामदेव भी आए, उनका भी पूजा किया, वो इनका भाव देखकर वो स्तंभित हो गए, दे गॉट स्टंड कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड एंड मेस्मराइज्ड एंड इम्प्रेस्ड। उन्होंने कहा आपको हमारा आशीर्वाद है, रंगनाथ जी मिलेंगे आपको, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया हमने, वी डिड नॉट रिकग्नाइज यू, हु आर यू, और आपने हमने आपको ऑर्डिनरी समझा और आपके सामने ये सब गैर व्यवहार किया, इट्स लाइक अ मिसबिहेवियर ना, टू अ ग्रेट सेंटली पर्सन समबडी स्टार्ट्स डिस्प्लेइंग लाइक दिस बॉडीली फीचर्स, इट्स अ इंसल्ट। तो उन्होंने सबको उनको दंडवत किया, आशीर्वाद भी दिया, प्रणाम किया, माफ़ी मांगी उनसे, और फिर इक्ष्वाकु के
दिव्य भाव के अनुसार। ऐसा भी लिखा है इंद्र ने आकर ये सब देखा कि सबकी पूजा हो रही है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको भेजा था इसको आकर्षित करने के लिए, तो इंद्र आए और क्रोध में उसने वज्र फेंका, तो क्या हुआ, उसी समय रंगनाथ जी आए ब्रह्मा लोक से और अपना चक्र फेंक कर वज्र को परास्त कर दिया। जब वज्र परास्त हो गया तो इंद्र को होश में आए, अरे ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा है, मैं वज्र फेंक रहा हूँ वो कुछ नहीं कर रहा है, अपने आप चक्र आके उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब ये बड़े आदमी का भक्त है, हमारे स्वामी का भक्त है। उस समय ऐसे कहा गया है, उस समय जब वो निकले तब ब्रह्मा जी रोए कि आप क्यों जा रहे हो, भगवान ने कहा इक्ष्वाकु देखो किस प्रकार से मेरा भजन कर रहा है, इतना सारा कसौटी उसका हुआ, परीक्षा हुआ, फिर भी क्या भाव है उसका, सबको भावना से परेशान कर दिया, कोई शस्त्र नहीं चला, युद्ध नहीं किया उसने किसके साथ में, बाण नहीं चलाया कामदेव के ऊपर और गोपियों के अप्सराओं के ऊपर, अपने भक्ति भाव से उनको परास्त कर दिया, मुझे चक्र को भेजना पड़ा और मैं खुद भी जा रहा हूँ, तो ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको मैं, इक्ष्वाकु महाराज के इतनी कठोर तपस्या से आप लोगों को अभी रंगनाथ क्षेत्र में उनका दर्शन होने वाला है, बिकॉज ऑफ हिज मर्सी ही हैज कम हियर, यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि कोई अनंत कोटि शर सालों के पहले आपके लिए तपस्या कर चुका है और स्वर्ग लोक ब्रह्मा लोक से उनको यहाँ तक लेके आया। एनीवेज सो जब वो नीचे उतरे रंगनाथ भगवान तो ब्रह्मा जी भी दुखी हो गए, लेकिन भगवान ने उनको एक वादा किया, देखो वो पृथ्वी का टाइम टेबल जो है वो आपके टाइम टेबल से अलग है ना, तो आप क्या करना, मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, आपकी भी सेवा लूँगा उसकी भी सेवा लूँगा, लेकिन वो मनुष्य लोक के अंदर रहता है उसका गणित अलग है, आप ब्रह्मा लोक में रहते हो तो आपका गणित अलग है, तो आपके पास मंगलारती के लिए आऊँगा मैं, आप अपनी मंगलारती करना, तब यहाँ पर कई युग बीतेंगे, उतना मैं पृथ्वी पर जाऊँगा इक्ष्वाकु के पास और उसकी सेवा लूँगा, कई पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी, हजारों हजारों पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी, जब आपका मंगला का समय आएगा फिर दोबारा आपके पास आऊँगा, फिर मंगला और राजभोग के बीच में भी इधर रहूँगा, फिर राजभोग के लिए आपके पास आऊँगा। तो ये जब यहाँ पर रह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के मंगलारती और राजभोग का बीच का समय है, इसमें आप लोग रंगनाथ जी का यहाँ पर दर्शन करें। इसके बाद में जब भगवान रंगनाथ जी अयोध्या में आए, यहाँ पर नहीं आए, अयोध्या में आए, यहाँ का अभी सफ़र पूरा नहीं हुआ है, मैंने आपको बताया था ना कहाँ तक कथा हमारी हुई थी कि सब बंदर लोग पुष्प विमान में बैठकर कहाँ गए, अयोध्या में गए और क्या किया वहाँ पर, क्या खाया, चने खाए, चने हनुमतीय कीर्तन करते हुए फिर वहीं पर विभीषण का इच्छा हुआ कि वहीं पर मैं रह जाऊँ। एनीवेज पहले अपन अपनी कथा पूरी करते हैं, तो रंगनाथ के लिए अयोध्या में इक्ष्वाकु महाराज ने मंदिर बनाया, बहुत दिव्य मंदिर बनाया, और फिर उसके वंश में फिर दशरथ जी महाराज हुए, बड़ी लंबी कथा है, इक्ष्वाकु ने बहुत सुंदर सेवा किया भगवान का, फिर उनका शरीर समाप्त हो गया, फिर उसके वंश में फिर दशरथ जी महाराज का जन्म हुआ। इसका मतलब क्या है, इक्ष्वाकु के बाद में जितने राजा हुए रघुवंश के रूप में, सूर्य वंश में, सूर्य के वंश ना ये सबको, सूर्य फिर मनु फिर इक्ष्वाकु फिर जितने भी राजा हुए सभी लोगों ने रंगनाथ का सेवा किया है, सभी लोगों के द्वारा ये पूजित हैं। फिर दशरथ जी महाराज ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया और दशरथ जी महाराज ने भी रंगनाथ का बहुत सुंदर सेवा किया, ये अयोध्या के क्या कहते हैं उसको, प्रिजाइडिंग डीटी थे, रंगनाथ जी वॉज द डीटी ऑफ अयोध्या, टॉप मोस्ट वर्शिपेबल डीटी ऑफ अयोध्या वॉज रंगनाथ जी, और दशरथ जी महाराज ने बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते। दशरथ जी महाराज फिर आदि जगन्नाथ आए, याद है ना आपको, गए थे ना हम लोग दर्भशयना में, वहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान की सेवा किया, तो आदि जगन्नाथ ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि आप पुत्र कामिष्ट यज्ञ करो, तो वशिष्ठ मुनि के साथ में बैठकर उन्होंने पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया। ये पुत्र कामिष्ट यज्ञ जब हो रहा था तो दशरथ महाराज का रंगनाथ के प्रति भक्तिभाव देखकर एक राजा वहाँ पर आए थे, उनका नाम था धर्मवर्मा, बड़े प्रभावित हो गए, देखो इन्हीं के वंश में इक्ष्वाकु हुए थे, ये कथा सुनते हैं कि रंगनाथ जी यहाँ पर कैसे आए, इक्ष्वाकु महाराज ने इतना तपस्या किया और भगवान ने सुना उनका तपस्या की पुकार सुनी और वो यहाँ पर आए, और दशरथ जी महाराज भी कितनी भक्ति से उनकी सेवा कर रहे हैं, तो मेरी भी ऐसी इच्छा है कि रंगनाथ जी हमारे पास आ जाए, और वो साउथ इंडिया में थे इस क्षेत्र में। धर्मवर्मा देख रहे थे
और धर्म वर्मा ने क्या किया, रंगनाथ के सौंदर्य से और इक्ष्वाकु के भजन से प्रभावित हो गए वो, और वो यहाँ पर आ गए। इस मंदिर के अंदर एक जगह है, इसका नाम है चंद्र पुष्करिणी। पुष्करण का मतलब क्या है, पुकुर। पुकुर का मतलब क्या है, जलाशय। उसके पास में बैठकर, उसके किनारे में बैठकर, जो कावेरी नदी के अंदर है चंद्र पुष्करिणी, वहाँ पर बैठकर धर्म वर्मा ने तपस्या शुरू किया और कई साल तक तपस्या करते रहे वो। रंगनाथ जी हमारे पास आए इस इच्छा से। फिर यथावकाश पुत्र कामिष्ठ जी के फल के रूप में राम भगवान, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इनका जन्म हुआ। फिर आप जानते हैं प्रभु रामचंद्र को वनवास हुआ। प्रभु रामचंद्र ने वनवास में उनका सीता का हरण हुआ, तो सीता का खोज किया उन्होंने, फिर रावण का वध किया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, और फिर ये कथा हमारी जो वहाँ पर रुकी थी वो यहाँ शुरू होती है कि सब लोग अयोध्या गए, अयोध्या में राज्याभिषेक देखा, बहुत आनंद लिया, राम भगवान राजा बने। तो विभीषण तो पहले उनको कहा था कि आप चले जाओ अभी आप, तो विभीषण ने सुग्रीव को बताया कि आप जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आपका राज्याभिषेक देखना है, तो उन्हें आमंत्रण दिया आ जाओ। और वहाँ गए तो बोले हम वहीं रहेंगे, अभी हमको वापस आने की इच्छा नहीं है, जहाँ पर आप हैं वहीं रहेंगे, आप आपके भक्त हैं। लेकिन भगवान ने कहा आपका राज्याभिषेक लंका के लिए हुआ है, आपको आपकी सेवा वहाँ पर है, भले आप मेरे भक्त हो लेकिन आपकी सेवा लंका में, आपको जाना होगा। तो बहुत रोए विभीषण, बहुत 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 रोए। तभी उनका प्रेम देखकर भगवान बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने उनको रंगनाथ का मूर्ति जो है वो भेंट दिया। आप सोच सकते हैं, द हार्ट ऑफ योर लाइफ, द मोस्ट वर्शिपेबल ऑफ अयोध्या फॉर एजेस, अभी नहीं कितने युगों से उनकी पूजा हो रही है। वो अपने हृदय की सबसे बड़ी प्रिय वस्तु जो है, जो अपने पुरखों की पूजित है, वो अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान उनको देते हैं, ये लो, ये रंगनाथ जो है वो मुझसे अभिन्न है, आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस रंगनाथ। तो अगर आपको मेरा सान्निध्य चाहिए, संग चाहिए, तो ये मैं ही हूँ। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर ये रहेंगे और आपके संग, आपका संग, आपको संग देंगे। तो फिर विभीषण थोड़े से शांत हो गए, चलो दूध नहीं तो छाछ सही। तो रंगनाथ को लेकर वो दक्षिण की ओर जाने लगे। दक्षिण को जाने लगे तो धर्म वर्मा जहाँ राज्य कर रहा था इस रंग क्षेत्र में, अब उन्होंने हॉल्ट लिया। हाँ, तो यहाँ के जो मुनि हैं, मुनि उनका नाम क्या है, इनका नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एनीवे, तो साधुओं ने यहाँ पर बताया, धर्म वर्मा को बोला कि आप तपस्या क्यों कर रहे हैं, आप तो राजा हो, तपस्या हमको करनी चाहिए, किस लिए तपस्या कर रहे हो। साधु लोग कहते हैं कि रंगनाथ जी को यहाँ लाना है मुझे अयोध्या से। तो धर्म वर्मा के समय पर रंगनाथ जी यहाँ पर आए, और धर्म वर्मा ने पहले से ही आने वाले रंगनाथ के लिए एक बड़ा भव्य मंदिर बना के रखा था। जैसे हमारे घर में किसी का समझो शादी हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके घर बनाते हैं, उसको सब कुछ घर सेटिंग कर देते हैं ताकि वो आने वाले हैं। तो रंगनाथ जी आने वाले, इसलिए उन्हें बड़ा मंदिर बना के रखा था और तपस्या को जारी रखा था। जब विभीषण रंग क्षेत्र में आए तो धर्म वर्मा ने उनको विनती किया ऑन द वे कि जरा आप यहाँ पर रहिए, साधुओं की इच्छा है 9 दिन का उत्सव मनाया जाए यहाँ पर। तो साधुओं के सान्निध्य में धर्म वर्मा ने विभीषण के सान्निध्य में 9 दिन तक रंगनाथ जी को रखे, उनका उत्सव मनाया, पुष्प उत्सव, भोजन उत्सव, आरती उत्सव मनाया। और 9 दिन के बाद में रंगनाथ को फिर दोबारा विभीषण ने उठाने का प्रयास किया, तो रंगनाथ जी उठ नहीं रहे हैं, तो बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। रंगनाथ जी कहते हैं कि मैं अभी यही रहूँगा क्योंकि ये मेरा भूलोक वैकुंठ है, यहाँ पर लक्ष्मी देवी कब से तपस्या कर रही है, मैं आऊँ, धर्म वर्मा भी तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या के प्रभाव से मुझे लग रहा है कि मुझे यही रहना चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरा, विभीषण ने कहा मेरा क्या होगा, आपने तो कहा था मेरे संग में आएंगे, मतलब कोई चिंता मत करना, सब विग्रह जो है वो पूर्वाभिमुख होते हैं, मतलब दे विल सी एट ईस्ट, लेकिन मैं दक्षिण की ओर मुंह करके लेटा रहूँगा, मेरे चरण कमल भी आपके पास होंगे, तो मेरा एक हाथ आपको आशीर्वाद देता रहेगा और मेरी दृष्टि जो है हमेशा लंका पर रहेगी और आपकी लंका का मैं रक्षण करूँगा और हमेशा आपके साथ रहूँगा भाव रूप में, आप निश्चिंत होकर चले जाना। फिर दुखी होकर और सुखी होकर दोनों तरफ से भगवान का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करके विभीषण चले गए। तो इसमें हम लोग को क्या सीखने को मिलता है, उनकी इच्छा थी कि भगवान की मूर्ति मेरे पास होने चाहिए, लेकिन भगवान की इच्छा मेरी इच्छा से बढ़कर होती है। दाय विल बी डन माई लॉर्ड, मेरी इच्छा कुछ भी होगी लेकिन आपकी इच्छा कि मेरी इच्छा होनी चाहिए। दाय विल बी डन, आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए और मेरी इच्छा हमेशा आपकी इच्छा के साथ मिलनी चाहिए। अगर वो अलग भी होगी तो मैं उसको आपकी इच्छा के अनुरूप बनाऊंगा, एक रूप बनाऊंगा। विभीषण का भाव समझना बहुत ज़रूरी है। विभीषण ने वहाँ पर बैठ के थैथयाट नहीं किया कि क्या प्रॉमिस किया था आपने, अभी आप प्रॉमिस फेल कर रहे हो, अच्छा नहीं है ये, इतना मैं उधर लंबा चला गया, उतना यहाँ से आया, आपने वादा किया, मैंने हाँ कर दिया, अभी आप जा रहे हो, अभी नहीं हाँ बोल रहे हो ना, वॉट एवर यू वॉन्ट माई लॉर्ड। अपना दुख प्रकट किया लेकिन बाद में भगवान की इच्छा को स्वीकार किया। ईश्वर इच्छा बली ऐसी, और जो व्यक्ति ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेता है उसका जीवन सफल है। वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट लॉर्ड्स डिज़ायर एज आवर डिज़ायर और मेक हिज डिज़ायर एज योर डिज़ायर, देन अवर लाइफ इज सक्सेसफुल। तो विभीषण ने यहाँ पर एक उच्च भक्त का लक्षण दिखाया और फिर वो लंका चले गए। लंका में उन्होंने निवास किया और यहाँ पर फिर रंगनाथ जी भगवान विराजमान हो गए। उसकी तपस्या कितनी हो गई, एक ब्रह्मा जी ने किया सबसे पहले, उनको प्रकट कराया, उसके बाद में इक्ष्वाकु ने कराया, उसके बाद में धर्मवर्मा ने कराया, इसलिए वो यहाँ पर आके विराजमान है और आप लोगों को बिना तपस्या किए फ्री में दर्शन हो रहा है। जय रंगनाथ भगवान की, जय ब्रह्मा भगवान की, जय राजा इक्ष्वाकु की, जय राजा धर्मवर्मा की। सबके प्रति ऋणी भाव, कृतज्ञ भाव लेकर आपको जाना है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू देम। जो उन्होंने किया है उसमें का एक कर्ण भी तपस्या हम लोग नहीं कर सकते। वी गेट सो डिस्टर्ब फास्ट विथ सम इनकन्वीनियंस, वी गेट सो डिस्टर्ब। लेकिन यहाँ पर आपके कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए कितने लोगों ने कई साल तक तपस्या किया, फिर कई पीढ़ियाँ गुजर गई और यहाँ पर बाढ़ आया, तूफान आया। भाई जब मुझे बताना भूल गए, मैं आपको आपको बताना चाहिए ज़रूरी। 24 दिसंबर 1964 के दिन रामेश्वरम में बहुत बड़ा तूफान आया। आपने सुना लोगों से, वहाँ पर जहाँ पर हम लोग गए थे ना, वहाँ तक लोगों की बस्ती थी, बिल्डिंग बिल्डिंग था, और जो है ना, जो पत्थर का बना हुआ वो रेलवे स्टेशन था, रेलवे के पटरी भी ड्राइवर ने मेरे को दिखाया, देखो यहाँ तक था रेलवे, एकदम समुद्र के पास तक रेलवे था और वो स्टेशन था रेलवे का, इतना बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए, मतलब पत्थर के दीवारें। 1964 में 24 दिसंबर के दिन पूरा साफ हो गया, कई किलोमीटर तक सब जनहानि, वित्त हानि और प्रॉपर्टी हानि हो गई। 24 दिसंबर के 2004 साल के दिन क्या हुआ, सुनामी आया नागपट्टिनम और सब जगह पर हाहाकार मच गया और हम सब लोग उसी दिन पे वहाँ पर गए थे। लेकिन वहाँ पर बड़ा आनंद का अनुभव लिया आप लोगों ने, हाँ, ये भगवान की कृपा है, योगायोग नहीं है। तो इसलिए सब लोग को हमेशा कृतज्ञ भाव में रहना चाहिए, यू हैव टू ऑलवेज बी ग्रेटफुल। अगर भगवान की इच्छा हो जाए तो उस दिन भी सुनामी आ सकता था, वहाँ पर तूफान आ सकता था और ज्वार आ सकती थी, हम लोग जल के अंदर फंस सकते थे, हाहाकार मच सकता था कि अरे भक्तिविदान हॉस्पिटल की यात्रा में क्या हुआ। सब जगह मुंबई में इस्कॉन के मंदिरों में इसकी चर्चा चलती रहती थी, क्या हुआ क्या हुआ है। लेकिन आप सब लोग को जाके बताने वाले हो कितने भाग्य की बात है, हम लोग वहाँ पर गए, इतने दूर तक गए, नामुमकिन चीज़ थी लेकिन हो गया सबका दर्शन। हम और हमारे भाई तो दोनों सागर की लहरें जहाँ ऐसे मिल रही थी ना, वहाँ पर हमने स्नान किया अंदर जाकर, एकदम जहाँ पर दोनों सागरों का मिलन है, जो एक्चुअली वहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने सभी तीर्थों को आह्वान किया था। कितनी भाग्य की बात है, हमारी क्या योग्यता, हमने क्या तपस्या किया है, क्या हमारी क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, क्या पुण्य कार्य हमने किया है, किस भक्तों की हमने सेवा किया, कुछ नहीं किया हम लोग ने, हमको ऐसा ये लॉलीपॉप मिल रहा है फ्री में। तो उसके लिए एक ही कीमत चुका सकते हैं हम लोग। एवरीबडी हैज़ टू बी ग्रेटफुल एट हार्ट, थैंक यू माई लॉर्ड, थैंक यू डिवोटीज, थैंक यू इक्ष्वाकु महाराज, थैंक यू धर्मवर्मा महाराज। हाँ, स्वयं कुछ पीढ़ियों के बाद में तूफान आंधी आने से पूरा रंग क्षेत्र जो है वो जमीन के अंदर चला गया, कंप्लीटली सबमर्ज्ड अंडर ग्राउंड। जैसे कुछ समय के बाद में रामचंद्र प्रभु ने बनाया हुआ जो ब्रिज था वो जल के अंदर चला गया, अभी वो जल के स्तर से 1 किलोमीटर नीचे है, 1000 फीट 1000 मीटर्स 3000 फीट इतना नीचे है जमीन के। मतलब आपके लिए अवेलेबल नहीं हो, यू कांट यूज इट, इट्स गॉन अंडरग्राउंड। द्वारका नगरी भगवान ने लीला किया इतने साल तक, 125 साल तक यहाँ पर द्वारका नगरी बनाया भगवान ने, वो भी आज अमन समुद्र के अंदर है। और जो द्वारका हम करते ना भेंट, वी आर विजिटिंग, वो केवल सिम्बॉलिक द्वारका है, उसकी याद में बनाया हुआ सिम्बॉलिक द्वारका है बाहर। जो रियल द्वारका है वो समुद्र के अंदर है, पूरे महल वहल जो भगवान ने 16,108 महल बनाए हर एक रानी के लिए, और प्रासाद और वाटर रिजर्वायर्स एंड पॉन्ड्स एंड बगीचा, वो सब समुद्र के अंदर है, आपके लिए अवेलेबल नहीं है वो। वैसे ही रंगनाथ क्षेत्र जो है वो जमीन के अंदर बालू के अंदर ढस गया पूरा, कई पीढ़ियाँ बीत गई। उसके बाद में उस समय धर्म वर्मा का जो वंशज था, व्हाट यू कॉल दैट फॉलोअर, राजा का पुत्र ऐसे आगे एक राजा जन्म हुआ, राजा कीली, उसको पता भी नहीं इसके अंदर क्या है। एक बार अपना शिकार करते करते वो यहाँ पर आया, तो उस समय एक अद्भुत घटना हुई। वो तो जहाँ पर विश्राम कर रहे थे पेड़ के नीचे, वहाँ पर एक तोता आया और वो तोता राजा से बोलने लगा, और उस तोता ने सारी कहानी बताई, पूरी जो हमने आपको बताई, और बताया कि इसके नीचे भूलोक वैकुंठ है, श्री रंगनाथ क्षेत्र भगवान इसके अंदर है, इसको खोदना होगा आपको। तो आपके लिए धन्यवाद देने के लिए एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है, राजा किली। हाँ, उस राजा किली ने इस तोते के द्वारा सुनाई गई कहानी को सुनकर प्रभावित हो गए, वो सारी सेना को लगाकर उसको खुदवाई शुरू किया, और उसके अंदर से श्री रंगनाथ भगवान प्रकट हो गए। रंगनाथ भगवान की विमान प्रकट हुआ और थोड़ा सुंदर मंदिर जो बनाया था वो प्रकट हुआ। लेकिन आप जानते हैं ना, जब जमीन के अंदर इतने साल मंदिर पड़ा रहा तो वो पूरा क्या कहते हैं उसको, इट गॉट डायलैपिडेटेड, हाँ एकदम जीर्ण हो गया वो मंदिर पूरा। तो राजा ने प्रयास किया अपनी तरफ से जितना उसको ठीक करना। उसके बाद में अभी एक सुंदर व्यक्ति की कहानी आती है, सब लोग सुनने के मूड में है कि थक गए? हरे कृष्णा। एक काम करते हैं, थोड़ा कथा को विश्राम देते हैं और सब लोग खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। हरे कृष्णा।